नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कई राज्यों ने अभी 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य भी चालू किया गया है, आज हमारे साथ में गांधीवादी एवं लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
गौतम भाई नमस्कार।
सर, जिस तरीके से प्रदेश के जिलों में भी कोविड का टीकाकरण 18 प्लस के लोगों को लग रहा है, तो सर
जी
ऐसा
जी
देखा जा रहा है कि कई सेंटरों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। क्या इसके लिए कोविड सेंटर बढ़ाने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके?
जी देखिए, अभी जो ये वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अभी तो लगभग हर जगह शुरू भी नहीं हुआ है,
जी
लेकिन जो शुरू करने की पहल की है सरकार ने, यह स्वागत योग्य कदम है और इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि तो इसके बिना कोरोना को अभी नहीं रोका जा सकता है वर्तमान में। तो इसको देखते हुए अनिवार्य है कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है, जो केंद्र खोले गए हैं, उनकी संख्या को डबल किया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरी
जी
बात, संख्या बढ़ाने के साथ साथ उसके टाइम टेबल को भी बढ़ाया जाए और
जी
बिफोर लोगों को जानकारी दी जाए कि आपका नंबर इस दिन आने वाला है, जिस दिन आने वाला है उस दिन उनको जानकारी दी जाए कि आप इस दिन आकर के वैक्सीनेशन करा लीजिए। उसका एक सही उपाय यह है, अगर यह ग्राम पंचायतों में चल रहा है तो वार्ड वाइज ग्राम पंचायतों को डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए और हर वार्ड को एक एक दिन मौका दिया जाए, और जो इसका समय जो चल रहा है वो समय इसका बढ़ा दिया जाए। अगर सुबह में 10 बजे शुरू हो रहा है तो प्रयास किया जाए कि शाम को 7 बजे तक। हाँ, वहाँ पे ड्यूटी करने वाले हमारे जो कोरोना योद्धा है, डॉक्टर है, नर्स है, अन्य जो उनके स्टाफ है, उनको भी रूटीन में लाया जाए, उनके भी शिफ्ट किया जाए। यही नहीं कि एक ही व्यक्ति कंटिन्यू रहे 12 घंटा, वो भी थक जाते हैं, उनको भी कोरोना से डर है, वो भी भयभीत है, तो उनको रूटीन में लाया जाए। और सबसे जो अनिवार्य यह है कि इसके समय को बढ़ाया जाए और वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाया जाए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जो अपना नारा है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, उसका भी पालन किया जा सके, तभी जाकर के सफल हो सकता है, वरना भीड़ लगेगी तो जिसको हम कम करने गए हैं वह दुगुनी मात्रा से बढ़ भी सकता है।
जी सर। सर, कोविड वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर सर जानकारी दीजिए। कई लोगों को कोई समस्या आ रही है, कई लोगों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है और कई लोगों को सर वैक्सीनेशन सेंटर पर जो जा रहे हैं तो उन्होंने पंजीयन नहीं किया है, तो ऐसे लोग वैक्सीन से वंचित भी रह रहे हैं सर। तो वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सर क्या प्रक्रिया है, क्या आप बताना चाहेंगे सर?
देखिए, वैक्सीनेशन के जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो समस्या ये आ रही है कि अधिकांश लोग उस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे। कारण है कि आज नाना प्रकार के प्रवेश, तो सारी मार्केट बंद है, बाजारे बंद है, हर चीज बंद है, किसी के मोबाइल पे रिचार्ज है कि नहीं है, नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन सब तमाम बातों को लेकर के समस्याएं आ रही है। इसमें तो ओपन करना चाहिए कि जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको भी लगाना चाहिए, उनका एक टाइम टेबल सेट कर देना चाहिए, शेड्यूल कर देना चाहिए कि जो लोग रजिस्ट्रेशन किए उनको पहले लगाया जाएगा और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए उनको बाद में लगाया जाएगा। लेकिन अगर हम यह सोचे कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम कर लेंगे तो यह संभव नहीं है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी लोगों के पास मोबाइल नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सके, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत होती है। तो हो सकता है कि व्यवस्थाएं लोगों के पास ना हो, तो व्यवस्थाएं इस काम में बाधा डाले ऐसा नहीं करना है हमको। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लोगों को प्रॉपर लिंक पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन से छूट जाए। एक प्रक्रिया बनाना चाहिए, एक ही जगह पे 2 काउंटर करना चाहिए कि जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको अलग काउंटर पे कर लिया जाए और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको अलग काउंटर पे कर लिया जाए। ऐसा रजिस्ट्रेशन कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है और मायने रखना भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को बनाई है तो इसलिए बनाई है कि शुरू शुरू में भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका हल नहीं है। रजिस्ट्रेशन को हमें छोड़ना होगा और विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों को भी वैक्सीनेशन में हमको सहभागी बनाना होगा, तब जाकर के हम मुहिम के करीब पहुंच सकते हैं।
सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर। ग्रामीण अंचलों में युवाओं में सर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी समस्या आ रही है, साथ में सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी एक क्षेत्र है सर, उनमें वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रामक जानकारी है सर, थोड़ा
जी
विस्तार से बताइए सर।
देखिए, भ्रामक जानकारी तो गलत है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो हम सबके फायदे के लिए हो रहा है, देशवासियों के फायदे के लिए हो रहा है। अब उनके पास जो जानकारी कहाँ से जा रही है, कहाँ से नहीं जा रही है, प्रॉपर में वो जानकारी ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे, ये एक समस्या है। लेकिन उनके दिल दिमाग को दुरुस्त करना है, उनके दिलो दिमाग से इस बात को हटाना है, भय को हटाना है। तो हम सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्रचार का साधन है उनके गांव तक पहुंचता हो उसके माध्यम से पहुंचाए। हमारे मीडिया के जो साथी काम कर रहे हो बराबर उस पर लिखे, बराबर उसको किसी भी माध्यम से वहां पे भेजे। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हो वो गाँव गाँव में जाकर के प्रचार करे। लेकिन आज स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हम देख रहे हैं कि वो सब काम नहीं कर रहे, जो प्रचार उनको मूल रूप से करना चाहिए वो नहीं कर रहे। अब कौन सा कारण है तो वही बताएंगे लोग, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, अपने जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों के दिमाग में इसके प्रति भय बैठा है उस भय को तोड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में समस्याएं आ रही, तो आएगी ही आएगी। मैं पहले सवाल में भी यही बोला कि बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास रिचार्ज अवेलेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि हर चीज बंद चल रहा है। और इस महंगाई के दौर में लोग जहाँ रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहाँ 400-500 रुपया का रिचार्ज कहाँ से मारने जाएंगे। तो ये बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सबके लिए वैक्सीनेशन खोलना चाहिए, तब जाकर के सफल हो सकता है।
जी सर, सर वर्तमान में बीते करीबन 2 से 2.5 महीनों से जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है और सर कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जो राशन वितरण हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियां देखी जा रही है। सर तो क्या अभी जो ग्रामीण लोगों के हिस्से में जो राशन आने वाला था शायद कुछ हद तक उनके राशन पर शायद राशन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है?
जी देखिए, यह एक सामाजिक बुराई है और यह समाज का भी दायित्व। राशन देने का काम ठीक है, सरकार वहां से राशन हमको भेज रही है, लेकिन निचले स्तर पर राशन वितरण का काम तो वहां के पंचायत स्तर के लोग करते हैं, तहसील स्तर के लोग करते हैं और तहसीलदार और जो सीओ होते हैं उसका मॉनिटरिंग करते हैं। तो कमजोरी तो यहाँ पे है। सबसे जो बड़ी कमजोरी है कि हमारे जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर जनप्रतिनिधि हमारे ध्यान देते तो अधिकारी वर्ग जो है काम करता। आज पूरे देश की स्थिति देखिए तो पूरे देश के अंदर जो नौकरशाह है यह प्रशासन है यह हावी हो चुका है। और प्रशासन जब हावी होगा तो जनता से कट जाता है, क्योंकि प्रशासन को जनता से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था जनता से कटी हुई रहती है। बेशक को जनता के सेवक कहे जाते लेकिन उनके ऊपर जनता का कोई दबाव नहीं रहता। जनता का दबाव हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर रहता है। अगर जनप्रतिनिधि हमारे अच्छे हो जाए, जागरूक हो जाए, तो ये अधिकारी वर्ग मिल करके घोटाला नहीं कर सकता। और एक बात और याद रखिएगा, आप तो पत्रकार है, कि जो नीचे के स्तर पे घोटाला होता है उस घोटाले की जो लिंक जुड़ी होती है वो बड़े स्तर तक जुड़ी होती है। अगर किसी ग्राम पंचायत में अनाज का कालाबाजारी हो रहा है तो आप मान के चलिए कि उसका जुड़ाव जो है जनपद तक है, उसका जुड़ाव जो है तहसील तक है, उसका जो जुड़ाव है प्रशासनिक अधिकारियों तक है, क्योंकि उनके बिना संज्ञान में आए भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अगर वो मन से प्रयास कर दे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात योगेश भाई, यह जो दौर चल रहा है महामारी का दौर चल रहा है, ठीक है भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे, लेकिन एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि अगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान दे रहे, तो एक समाज का भी दायित्व बनता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस आफत काल में अपनी ईमानदारी सत्यनिष्ठा की भूमिका को निभाए और जो अनाज है वो दे। और जो अनाज आ रहा है शासन के तरफ से, सरकार को चाहिए कि उसका उचित तरीके से मॉनिटरिंग करे, देखभाल करे और सख्त कानून बनाए, सख्त निर्देश दे कि अगर कहीं से भी गड़बड़ी पाया जा रहा है तो जो वितरण अधिकारी उनको सस्पेंड किया जाएगा। यह समस्या हम लगातार देख रहे हैं, रामाकोना में 2-3 दिन से हमारे एक साथी दिनकर जी उठा रहे हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? प्रशासन के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, तो प्रशासन को तो चाहिए कि ऐसे लोगों को जब्त करे और ऐसे लोगों को सस्पेंड करे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सभी लोगों की मिली भगत है जो मिल करके इस कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे। और सिर्फ अनाजों का ही कालाबाजारी नहीं हो रहा है भाई, आप देखिए तो इंजेक्शन और ऑक्सीजन का भी कालाबाजारी होने लगा है। एक सिलेंडर कितने रुपए महंगे में बिक रहे हैं जो कि जीवन रक्षक है। इंजेक्शन की कालाबाजारी कितने जोरों से चल रही है, 1600 रुपए का इंजेक्शन जो है 1600-1600 रुपए में बेची जा रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है चोरी करके बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी तो बहुत तरीके से बढ़ गई है। तो कालाबाजारी को रोकना सिर्फ प्रशासन और सरकार का ही काम नहीं है, समाज का भी काम है, क्योंकि एक समाज का और एक नागरिक का अचित दायित्व होता है कि अपनी भूमिका का निर्वहन करे और ईमानदारी से अपने काम को करे।
सर ग्रामीण अंचलों में कोविड वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक जानकारी है उसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग प्रशासन द्वारा किस तरीके से कदम उठाया जाए ताकि इन लोगों में एक वैक्सीनेशन को लेकर सकारात्मक पहल देखी जाए?
देखिए, शासन और स्वास्थ्य विभाग को तो अभी तक जो देखा जा रहा है कि ठीक है, हमारे डॉक्टर मेहनत तो कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रशासन के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, 40 डिग्री के तापमान में हमारे पुलिस वाले खड़ा होकर के बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन जिस स्तर से प्रचार प्रसार होना चाहिए उस स्तर से प्रचार प्रसार समय शासन और स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी नहीं किए, ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किए। उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किए कि जो शहरी क्षेत्र है जहां तक नगर लगता है वहां तक इसको सीमित कर दिया जाए। अगर यही प्रयास 2-3 महीना पहले कर लिए होते या पहले लॉकडाउन खुलने के बाद कर लिए होते, जो 2020 में कोरोना आया और उसके बाद जो हमारा खुला सितंबर अक्टूबर में जो लॉकडाउन खुला, अगर उस समय से लेकर के फरवरी 2021 तक यह जमकर के प्रयास कर लिए होते, वैक्सीनेशन का प्रचार वगैरह कर लिए होते, तो यह नौबत नहीं आती। गांव वालों के जो दिलो दिमाग में भ्रामक स्थिति है उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि अपनी टीम को भेजे, उनके गांव जाए, क्योंकि कैंप लगाना तो मुश्किल है, कैंप लगाना तो और घातक है। तो कहीं ना कहीं उनकी टीम टुकड़ियों में बट करके छोटे छोटे गाँवों में जाए, पंचायत में जाए, पंचायत में एक प्रचार का साधन बनाए, एक प्रचार करे, एक बताए लोगों को, सरपंचों को जिम्मेदारी दे, वार्ड के सदस्यों को जिम्मेदारी दे, जो ग्राम के सेक्रेटरी है उनको जिम्मेदारी दे कि भाई आप अपने गांव में करिए, और गांव के सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दे कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गांव में इतना वैक्सीनेशन होना चाहिए, इन सारे लोगों को होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आपकी लेबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, तब जाकर के हो पाएगा। और गाँव के जो लोग होते हैं वो सीधे होते हैं, उनमें कोई मन में छल और कपट नहीं होता है, बस जरूरत है कि हम समय से उनके यहाँ पहुँच जाए और समय से हम उनको जानकारी उपलब्ध करा दे तो वो लोग आराम से वैक्सीनेशन करा लेंगे, कोई इसमें दिक्कत और कोई समस्या नहीं है।
जी सर, सर बीते दिनों आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से सर जिले में जो ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही थी, आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से अपनी राय भी दी थी।
जी बिल्कुल।
सर वर्तमान में जिले के अनेक ब्लॉकों में ऑक्सीजन प्लांट खुले हुए हैं, जैसे जिले में भी खुले हैं और ब्लॉकों में भी देखे जा रहे हैं, और निरंतर कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर अपने जिले में कमी आ रही है, सर किस तरीके से देख रहे हैं इसको?
देखिए, जो शुरू में ऑक्सीजन की समस्या थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका यह कारण था कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोविड इतना तेजी से फैलेगा और कोविड के इतने मरीज निकलेंगे। केवल अपने जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है और प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान की बात है। यह एक समस्या है जो तत्काल सामने आई, और तत्काल जब समस्याएं आती है तो उसको संभालने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और अब हमारा देश, हमारा जिला, हमारा प्रदेश और पूरी तरीके से संभल रहा है और चारों तरफ ऑक्सीजन के प्लांट अब लग रहे हैं। अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लोग भी स्वतः अपने पैसे से कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार भी जागरूक हो रही है और हमारे नेता लोग भी जागरूक हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि बहुत तेजी से काम करके ऑक्सीजन के प्लांट को बढ़ा रहे हैं, लोगों तक ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहे हैं ताकि लोगों का जान बच सके। यह बहुत ही अच्छी पहल है और इसकी ही जरूरत है। अगर ऐसी ही तत्परता से हम काम करते रहे तो आने वाले दिन में कोविड हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन सबसे जो मेन समस्या है कि इसकी कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। अगर कालाबाजारी होगी तो पुनः समस्या वही जमी की जमी रह जाएगी, समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। तो जरूरत है कि प्रशासन जो है इसकी मॉनिटरिंग करे, और अब तो हर जगह से ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगा है, सरकार भी खूब जागरूक हो गई है, केंद्र सरकार भी जागरूक हो गई है, चारों तरफ ऑक्सीजन दे रही है। लेकिन कहीं कहीं देखा जा रहा है कि जो राज्य कह रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे दिल्ली के बार बार मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको स्वतः सामने आना चाहिए कि भाई आपके दिल्ली में कालाबाजारी क्यों चल रहा है। कालाबाजारी को रोकने का काम तो मुख्यमंत्री उनके प्रशासनिक अधिकारी को करना चाहिए। तो जो शुरू में समस्या आई उसमें कुछ थोड़ा बहुत कालाबाजारी थी कि लोग ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है उसको स्टॉक करके रख लिए थे, लेकिन अब वह समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है और लोग स्वतः जागरूक हो रहे हैं, प्रशासन भी जागरूक है, हमारी सरकार भी जागरूक है ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जो है ये सिलेंडर को पहुंचाया जाए और कोविड को हराया जाए।
जी सर, जिस तरीके से कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों 18 प्लस के लोगों को सेंटर पर पहुंचकर जिस तरीके से सेंटर बनाने की मांग हो, चाहे कोविड वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में जो समस्याएं आ रही वो हो, वर्तमान में राशन वितरण में हो रही समस्या, चाहे जिले में ऑक्सीजन को लेकर हुई कमी को देखते हुए अनूप सर ने मोबाइल वाणी पर अपना अमूल्य समय दिया। अनूप सर, मोबाइल वाणी के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं और समकालीन समस्याओं पे आप हम लोगों को सुनते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं बोलने के लिए। इससे समाज में एक जागरूकता जाती है और समाज के लोग जागरूक होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम लोग अपना ही भूमिका समाज के अंदर निभा सकते हैं। तो इस बात के लिए मोबाइल वाणी और आपके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वारंट से आपका दोस्त योगेश।